हेलो जी, वेलकम। आप सुन रहे हैं अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। अगर गलती से पसंद आ जाए तो शेयर भी कर सकते हैं। अब मजा करिए।
मेरा नाम संदेश है राजीव जी, चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड बाय संदेश।
पहले आप जर्नलिस्ट थे ना कहीं?
नहीं, मैं एक्चुअली अपने आप को जर्नलिस्ट कहता ही नहीं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ।
थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं?
1 2 3 4 है ना? तुम तो बिना बोले बताए।
किसी ने बताया?
तुम अचानक आयोगे ना बिना फोन पे तय किए? ये पहले से फिक्स था हमारा। बताओ, जल्दी बताओ।
नहीं नहीं, कर लीजिए।
कुछ करनी है बात तो कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कौन है, क्या क्या बात, क्या कुछ?
ये जो जाजगीर वाला था ना, जो फील्डर
वाला, रघुराम राजन। मैं जानते
हैं,
रुचि शर्मा से लिखा
अकेडमी
नहीं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं,
पढ़ा लिखा
इतनी किताबें उसकी आएंगी
कपड़े आ जाए ना वो।
ऐसा बहुत होता रहता है, लोग आते हैं और बोलते हैं रघुराम राजन को कॉल कर दो, इंटर्नशिप लगानी है। तो बहुत होता है क्या?
रोज ही लोग।
सबसे वियर्ड आपसे क्या फेवर मांगा किसी ने आज तक?
शाहरुख खान से मिलवा दो। तो काम हुआ हाँ? मेरी बेटी बड़ी फैन है, मेरा बेटा बड़ा फैन है।
आप तो मिलते रहते होंगे, आप तो फ्रेंडली रिलेशन हाँ, होंगे आपके तो?
कल रात में भी थे।
अच्छा
अच्छा,
अरे वाह वाह,
करो फिर शुरू
शुरू। अरे यही हो रहा है,
अरे इंटरव्यू चल रहा है।
आपको क्या लगा मैं बोलूंगा कि राजीव जी राज्यसभा सांसद है? ऐसा नहीं होगा यहाँ पे।
बहुत बातें मैं ऐसे ही बोल गया।
आपको मेरा मजाक जब भी थोड़ा ज्यादा लगे आप प्लीज मेरे को वहीं टोक देना, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता।
मुझे नहीं पता इंटरव्यू चल रहा है, मैं तुम शुरू करने वाले?
अरे नहीं, शुरू हो गया। रवि शास्त्री के बारे में कुछ बताओ।
यार ओके यार।
अच्छा,
और बहुत अच्छा कमेंट्रेटर, सीरियस।
कुछ इरिटेटिंग बताओ रवि शास्त्री के बारे में।
इरिटेटिंग है कि वो कमेंट्री करते हैं, जब कभी कभी मेरे ऊपर कैमरा पड़ जाता है तो वो हम बड़ी जोर से कहते हैं शुक्ला जी, तो वो जो है लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों बोलते हैं।
बहुत मजा उड़ाते हैं वो आपका।
हाँ।
आपका इतना क्यों मजाक उड़ाते हैं वो?
दोस्ती है, दोस्ती में कुछ भी।
वो ऐसे ही बोलते हैं वो।
हाँ।
भाई क्रेजी। आप तो कभी उन्हें बोलते होगे कि यार ये क्या करता रहता है यार?
तो मुझे लोग बताए तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम जो है, अरे यार वो जब आप आते तो मुझे बोलना ऐसे।
क्या बोला ग्रेग चैपल जाने से पहले?
नहीं, ग्रेग चैपल का तो देखो ऐसा कि वो
बहुत गड़बड़ हो गई।
जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा था ताज पैलेस में, उनका इंटरव्यू डालमिया जी, उस इंटरव्यू में डालमिया जी बैठे, मैं बैठा था और रणबीर महेंद्रा जी।
अच्छा।
तो उसमें उन्होंने कहा, कंडीशन लगाई कि मैं जो हूँ, आई एम गोइंग टू ट्रीट ऑल द प्लेयर्स एट पार, नो सीनियरिटी एंड नो जूनियर प्लेयर, एवरीबडी विल बी इक्वल इन माय एज। उस समय सब लोगों डालमिया जी वगैरह ने बड़े पॉजिटिव वे में लिया कि इनका ये है कि भाई ये सबको जूनियर प्लेयर्स को भी इनकरेज करेंगे,
लोकतांत्रिक आदमी।
उसको टीम में जाके ऐसा कुछ हो गया, सीनियर प्लेयर्स को लगा जैसे कि वो सीनियर प्लेयर वर्सेस जूनियर प्लेयर्स कर रहे हैं या सीनियर प्लेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं डेलिबरेटली या खबरें लीक हो रही हैं। उसको लेके काफी एजिटेटेड थे सीनियर प्लेयर। तो मुझे सचिन का फोन आया कि भाई इस तरह से जब हम वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में शुरू में हार के चले गए, फिर पवार साहब अध्यक्ष थे, पवार साहब से बात हुई, फिर एक मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें उन्होंने आके अपना प्रेजेंटेशन किया और प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले उन्होंने कह दिया कि यू नो आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। तो बात
उन्होंने नहीं बोल दिया, ग्रेग नहीं बोल दिया,
ग्रेग नहीं बोल दिया,
वो तो निकलना ही था उसके बाद।
उनको पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ डिसीजन होने वाला।
उस अपॉइंटमेंट से गैरी की अपॉइंटमेंट तक क्या सीखे आप लोग, क्या? क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद गैरी की जो अपॉइंटमेंट,
उसके बाद ये सबसे बड़ी ये देखा गया कि भाई जो भी कोच आए वो जेल करना चाहिए, प्लेयर्स के साथ मिलजुल के चले और उनको ये करके करे। डंडा चलाने से सिर्फ कुछ नहीं होता, जहाँ सख्ती करो नहीं सख्ती करो। जॉन राइट थे कोच, अच्छे कोच थे, और कई बार हो जाता था कि उनकी और कैप्टन की नहीं बनती थी कई।
अच्छा, सौरभ का?
हाँ, नहीं बनती थी, लेकिन ये कि पूरा आपस में बात करके ऐसा थोड़ा होता कि झगड़ा हो जाए। अब उसी में सहवाग को ये हो गया था कि वो थप्पड़ मार दिया और धक्का दे दिया ओवल में, है ना?
जॉन ने,
जॉन का तो पता है कि
जॉन ने थप्पड़ मार दिया था वीरो को,
तो धक्का दे दिया, पुश कर दिया, लेकिन वो बाहर मीडिया में बहुत साल बाद आया। तो मैंने जॉन से जाके बात की, इंग्लिश ड्रेसिंग रूम के बगल में एक रूम था, उसमें बैठे हुए थे।
अच्छा, अकेले बैठे हुए?
भाई तुमने ऐसे क्यों किया, इस किसी को टच करने का मैंडेट नहीं आपने।
बिल्कुल।
तो उन्होंने कहा, देखो मैं उसको अपना बच्चा मानता हूँ, गुरु की तरह मैंने उसको, गुस्सा आ गया मुझे क्योंकि मुझे था कि आज ये सेंचुरी बनाएगा, और वो एक शॉट को मना करते थे कि वो जो
अच्छा
हुक करके जो पीछे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ डालते हैं उसमें कैच हो रहे हैं, तो वो कहना मैं मना कर, फिर आज उसने कहा, तो गुरु जैसे एक शिष्य पे नाराज होता अपने प्री शिष्य पे, तो उसी तरह से मैंने ये करके किया। तो फिर आके मुझे मैंने सबसे बात की सहवाग को समझ, सहवाग ने इस बात को समझा, फिर उसको इशू नहीं बनाया, बल्कि यहाँ तक बात हुई, ये तो सहवाग ने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में कि मुझे शुक्ला जी ने कहा कि मैं ग्रेग से तुम्हें माफ़ी मंगवा दूंगा, तो उससे जॉन से माफ़ी मंगवा दूंगा। जॉन को मैंने तैयार भी कर लिया, तो कह रहा बिल्कुल मैं माफ़ी मांग लूँगा उससे। सहवाग ने बड़प्पन दिखाया, उसने कहा नहीं ये हम नहीं करेंगे, हम मतलब बहुत हम एम्बेरेस हो जाएंगे अगर जॉन हमसे माफी मांगे। फिर बाद में होटल में जाके सहवाग नहीं कहा मुझे,
कितना क्यूट लोग हो यार आप लोग न्यूजीलैंड का द्रोणाचार्य आपका बहुत 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 क्यूट स्टोरी है। लूडो खेलते हो?
पहले खेलते तब लूडो नहीं खेलते।
किसी
देखे हम खेलते नहीं आपके बार की आप
बोलो
राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्पिनर हो क्या वो लूडो खेलते क्या? हम खिलवाते हैं और जो खिलवाते हैं उनको खुद नहीं खेलना होता।
आप खिलाड़ियों से ऊपर हो,
खेल देखने का भी तो मजा होता है।
बिल्कुल। अच्छा आप देखते ही हो?
अब राजनीत क्रिकेट ये सब जो है ना इन चीजों में लगे रहे तो अपने आप में सुबह से शाम तक खेली तो सब है।
2002 आप बैल्कनी में थे, मेरे को यहाँ के पता चला क्योंकि हमने फोटो तो देखी है लेकिन कभी नोटिस नहीं किया था कि आप बैल्कनी में थे लॉर्ड्स में।
मैनेजर था।
तो बताओ कुछ फिर क्या मतलब कुछ हो जाए डिटेल में, किस तरह सुना उस दिन का?
मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहा था।
अच्छा।
तो मैंने ब्लड प्रेशर की गोली भी खाई। मैं सौरव अगल बगल बैठे थे।
अच्छा।
सौरव कैप्टन थे तो सौरव ने मुझसे कहा कि राजू भाई मेरे साथ पता नहीं क्यों होता कि मैं लीग के सारे मैच जीत जाता हूँ फिर फाइनल में आके हार जाता हूँ, हमारे साथ ऐसा क्यों होता? फिर कहते हैं अरे ये तो बनाने सिर्फ 52 रन है और इतनी गेंदे बाकी, तो हो सकता है ना? हो सकता है तो फिर भेजो मैसेज कि धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करके खेलते रहे। और वही हुआ, वही स्ट्राइक करते करते फिर जब हुआ कि अब जीतने की कगार पर पहुंच गए तो सौरव ने कहा कि मैं तो टी शर्ट उठा के सब पूरी टीम टी शर्ट उतार के।
अच्छा उसने बोला कि सारी टीम करेगी?
टीम ही करे।
आपको भी बोल दिया था क्या?
नहीं मुझे तो नहीं। तो मैंने कहा वो ठीक नहीं लगता। सचिन ने भी कहा कि नहीं, सचिन ने अलग से मुझे कहा कि अच्छा नहीं लगता है, तो ये जेंटलमैन गेम है। तो सौरव ने कहा मैं करूँ, मैंने हाँ तुम करो। फिर सौरव ने वो जो है क्योंकि फ्लिंट ऑफ ने किया था,
उसने किया था इंडिया में किया था
उसके पहले, तो फिर फोटो ऐसा बन गया कि आज तक चल रहा।
उस वक्त सचिन वचिन लजा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं या फिर
लजा रहे थे, ये था कि पूरी टीम नहीं और वो जो है सब खुश थे।
सबसे इरिटेटिंग कौन है क्रिकेटर आज तक का आपको, जो मतलब फनी वे में जिसने आपको परेशान करके रखा हो?
जैसे उन दिनों वो मुंबई ड्रीम्स बॉम्बे ड्रीम्स का एक चल रहा था प्ले जबरदस्त, वहाँ जो इंग्लैंड में चल रहा था लंदन में।
हाँ।
टीम बोली मुझे दिखाओ।
अच्छा ओके ठीक है।
तो मैंने कहा किस कैसे दिखा इसको, उसको तो इसके टिकट भी नहीं थे 6 महीने के।
अच्छा।
हाँ तो फिर मैं शाहरुख से बात की, शाहरुख ने कहा उसने फराह खान ने कुछ इसमें कोरियोग्राफी की है।
अच्छा।
हाँ। मैं फराह से बात करता हूँ, शाहरुख ने फिर ऑर्गेनाइज कराया।
हाँ।
पूरी टीम गई बस में बैठ के देखने और वो दिखाया पूरा शो मुफ्त में,
फुल मजे कराते हुआ टीम। हाँ।
को भी तो कुछ रिलैक्स
नहीं, नहीं तो भाई आपका भी तो वही काम है, रिलैक्स तो होने ही चाहिए।
जैसे मैनचेस्टर में सबने कहा कि देखनी है वो फिल्म आई थी हॉकी वाली
चक दे इंडिया।
हाँ। तो वहाँ के फिर मैंने यश चोपड़ा से फ़ोन पे बात की, फिर यश चोपड़ा ने वहाँ बोल के जो डिस्ट्रीब्यूटर था इंग्लैंड का उससे बात करके वहाँ रखवाया शो, तो पूरी टीम देखने गई।
आप भी सीधा यश चोपड़ा से बात कर रहे हो? एक एक हॉल में चले जाते?
हाँ लेकिन वो टिकट नहीं मिलते थे ना।
अच्छा स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है?
तो स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं। हाँ। उन्होंने टीम के लिए 15-20
समझ गया इंतजाम
करा दिया।
क्या स्वैग है बंदे का, आपका स्वैग है पता है, आप गॉगल्स पहना करो तगड़ी। और रवि शास्त्री बोला आपको मजाक में उड़ाया करे, रवि शास्त्री ज्यादा स्वैग है आप में।
रवि शास्त्री जनो दोस्त
ना। नहीं दोस्तों
में बोलता रहता है
तो साथ में नहीं। एनीवे मैं क्या बोल रहा था यार, एक चीज थी, मैं ना क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज लेना चाह रहा हूँ लेकिन सारे क्रिकेटर पैसे मांगते हैं इंटरव्यू देने के, अनलेस आप उनके इनर सर्कल में हो, कुछ इसमें कुछ होना चाहिए।
एक्चुअली इतने लोग उनके इंटरव्यू मांगते हैं।
हाँ, ये बात
किसी जमाने में बहुत कम इंटरव्यू होते थे तो फिर कोई पैसे वगैरह नहीं लेते थे। अब वो इतने इंटरव्यू है कि बिल्कुल ये लगा हुआ है तो उसकी वजह से
मतलब करोड़ों करोड़ों में बात चली जाती है।
अब उन्हें लगता है कि सब ये वाले मांग रहे हैं तो उनसे भी
ये वो ट्रेंड हो गया है बहुत। मेरे को बताया कि रॉयल फैमिली ऑफ डेनमार्क के साथ आपने योगा किया एक बार?
प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट थे, मैं उनके डेलीगेशन में था वहाँ पे गया हुआ था, तो बैंक्वेट होते थे तो किंग की सिस्टर एक तरफ मेरे बैठी थी और उनकी डॉटर दूसरी तरफ मेरे बैठी हुई थी, प्रेसिडेंट इसके बाद बैठा हुआ था। बात करते ना इसीलिए तो बैठाए जाते हैं के बाद एक है ना डेलीगेशन का आदमी और एक वो।
हाँ।
तो उनकी डॉटर मुझसे बात कर रही, तो उसने कहा कि मुझे तो मैं तो इंडिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं तो ऋषिकेश में भी रही हूँ, मैंने
अच्छा
योग सीखा है, तो योग में क्या क्या सीखा, तो वो बताने लगी अलोम विलोम और प्राणायाम ये वहाँ पे। तो ये जो है नॉर्वे की,
अच्छा नॉर्वे का,
नॉर्वे की,
ठीक है।
मैंने उससे कहा कि लेकिन मुझे कपालभाति नहीं आती।
अच्छा आपने बोला,
उसने कहा मुझे कपालभाति, तो मुझे सिर्फ कपालभाति आती तो मैंने उसको वहीं पे
कल्चर का संगम हो गया,
धीरे से ऐसे ऐसे करके कपालभाति बताई। सामने ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बैठी थी है ना, ये जो बाद में हाई कमिश्नर भी इंग्लैंड में,
ठीक है,
तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया, उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया। अच्छा। ये तो योगा सिखा रहे थे
प्रणब मुखर्जी जी को।
प्रणब जी,
अच्छा।
तो प्रणब भाई बहुत हंसे। दूसरे दिन फिर वो लंच था,
अच्छा
हाँ, एक कौशल में, तो वहाँ वो आया किंग का बेटा प्रिंस जो था, उसने मुझसे कहा कि थॉट कपाल भाती टू माई वाइफ यस्टरडे, सो यू डू विल यू प्लीज हेल्प मी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न। आई सेड आई एम नॉट योगा टीचर, I just, you know, told her how to do it.
ठीक है।
So you can also do it like that. Then I had to tell him also.
आपका एक्सेंट बहुत सही था राजीव जी, अभी जो आपने एक्सेंट किया ना, ओ भाई।
बगल में किंग की एक सिस्टर बैठी थी।
अच्छा।
She was older than king. She must be 80 plus.
अच्छा।
उनसे बात होने लगी, उनका नाम मैंने बुआ जी रख दिया।
क्या बात कर रहे हो, बुआ जी, नॉर्वे की बुआ जी हो।
हाँ। वो जो है मुझसे कहने लगी कि मैंने कहा कि बड़े अच्छा आपने नेकलेस और वो क्राउन उसमें,
अच्छा फुल था,
तो मैंने कहा ये घर में आप ऐसे रखती हैं और कैसे, उनके नहीं कुछ घर में नहीं रखती हैं, हम तो दूर एक फ्लैट पर रहती हैं यहाँ से 30 किलोमीटर, जब इस तरह के कोई बैंकवेट होते हैं तो बुलाया जाता, फिर यहाँ ट्रेजरी से निकाल के हमें दिए जाते हैं, 2 घंटे पहले हमें ये सब पहनने पड़ते हैं तभी आते हैं, अभी मैं जब जाऊँगी तो निकाल के हमसे ले लिए जाएंगे, इसके बाद हम अपने अकेले कार ड्राइव करके अपने घर चले जाएंगे, है ना। तो मैंने कहा
बुआ जी भी बहुत सही है।
फिर बुआ जी जो है, बुआ जी धड़ाधड़ वाइन पी रही थी।
ठीक है ठीक है ठीक है।
बुआ जी थोड़ी सी
टिप्सी
हो गई, बुआ जी मुझसे बोली कि इस कंट्री का जो रूल है ना, मैं उसके बड़े खिलाफ हूँ।
अच्छा
क्यों?
हाँ,
कहने यहाँ का क्वीन का सिस्टम ही नहीं है, वरना मैं एल्डेस्ट चाइल्ड तो मैं हूँ।
ठीक बात है,
ये मेरा भाई मुझसे छोटा है, ये किंग बन गया और मैं नहीं बन पाई,
पितृसत्ता।
हाँ, तो यहाँ पे ये जो है, तो इसलिए वो शी वाज
आपसे बोल रही है। हाँ, टिप्सी हो गए। हाँ, आपने भी थोड़ी टिकाई होगी
मुझे, मतलब
शी वाज, आपने भी थोड़ी टिकाई होगी।
तो वो तो पानी जूस
की, अरे चलो ही ना। आपने तो बाल ठाकरे साहब से बियर के बारे में पूछा था, फ्रेंकली अल्कोहल के बारे में फ्रेंकली बात नहीं कर सकते क्या इंडिया में?
नहीं नहीं बात कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना।
और मुझे याद है स्पेन में नरसिम्हा राव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक बार,
स्पेन में
मैं गया था उनके साथ, तो वहाँ पे स्पेनिश जर्नलिस्ट ने इंग्लिश में उनसे सवाल पूछना शुरू किया, उन्होंने स्पेनिश में जवाब देना शुरू कर दिया, उसे इतने खुश हुए
नरसिम्हा राव जी
ने कि उसे एकदम इतने खुश हुए। उसी में उन्होंने एक सेंटेंस का जवाब दिया जिसमें उन्होंने बोला था द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल, कोई भी गवर्नमेंट इसको बदल नहीं पाएगी, और वही हुआ।
स्पेनिश आती थी उन्हें फ्लुएंट?
नौ लैंग्वेज आती थी।
क्या क्रेजी आदमी मालूम होता
है, चाणक्य थे वो, एकदम भारतीय राजनीति के चाणक्य थे।
अरे बाप रे यार, आपका चेहरा भी खेल उठा उनके बारे में बात करके।
हाँ नहीं, विद्वान तो थे, देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म
बिल्कुल, वो तो
एक राजा चले गया कमेटी और नरसिम्हन कमेटी, ये राजीव गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में डलवाई थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई।
ठीक बात
है ना, इसका नरसिम्हा राव जी बना, उन्होंने उसको लागू किया, और मनमोहन सिंह जी नौकरी कर रहे थे बाहर, तो इंदिरा जी ने उनको बुला के यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में रखा था। वो नरसिम्हा राव जी की डिस्कवरी मनमोहन सिंह नहीं थे, गांधी फैमिली की डिस्कवरी थे मनमोहन सिंह। उन्होंने बड़ा संघर्ष देखा, मैं तो मिनिस्टर उनके अंडर में था, तो मैं लगातार उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। वो भी चुपचाप काम करते थे, श्रेय नहीं लेते थे, कितना भी कहो कि अपनी चीज,
उनकी तो पब्लिसिटी
लो, तो बिल्कुल नहीं, पब्लिसिटी में पढ़ते नहीं थे, चुपचाप काम करते रहते थे और कम बोलते थे।
हाँ, जो ज्यादा काम करता है और श्रेय कम लेता है वो बोलेगा भी कम ही।
हाँ, तो एक दिन मैं उनके साथ बैठा था, तो मुझे, मैं पाकिस्तान से आया था, तो मैंने उनको कहा कि लेकिन मेरा भी बड़ा मन है पाकिस्तान जाकर,
अच्छा
एक बार जाने का। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ जाना चाहते हैं आप? कहने अपने गांव जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक बार तो आप गए थे कहा, जब मैं IMF वर्ल्ड कप काम वर्ल्ड बैंक में कहाँ काम करता था तब मेरे साथ ही काम करता था पाकिस्तानी।
अच्छा,
बाद में वो भी फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ का बना था।
अच्छा,
हाँ, तो कहना वो ले गए थे तब मैं गया, लेकिन तब मैं रावलपिंडी गया था। बचपन में बैसाखी भी जो गुरुद्वारे में जाता था वहाँ गया था, लेकिन अपने गाँव नहीं गया। तो अपने गाँव में कहा क्या देखना चाहते, अपना घर आप? बोले नहीं, जिस स्कूल में मैं क्लास 4 तक पढ़ा उस स्कूल को देखना चाहता।
ये कब की बात है? जब वो PM थे,
प्राइम मिनिस्टर थे,
प्राइम मिनिस्टर ही थे। अच्छा,
PM हाउस की बात है, वहीं पे मेरी बात उनसे।
अच्छा,
तो मैंने कहा कि किस, अच्छा तो मैंने कहा घर अपना, कल मेरा घर तो बचे नहीं, वो तो खत्म हो गया था।
हाँ।
तो उनके दादा ने उनको पाला था, उनकी मदर तो बहुत मर गई थी बचपन में, उनको याद भी नहीं कि कौन है। तो दादा की हत्या हो गई थी दंगों में, तो उससे बहुत क्षुब्ध थे, वो अपने फादर के पास रावलपिंडी चले गए थे, वही वहाँ पेशावर, और पेशावर में वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे। जब पार्टीशन हुआ तो उनको इधर आना पड़ा,
ठीक है,
वहाँ से आके। तो कहने वो याद मुझे आ जाती दादा की, इसलिए मैं तब गांव नहीं गया अपने।
तो उन्हें स्कूल देखना था अपना।
तो अब वो कह रहे थे मेरा मन है कि एक बार मैं प्राइम मिनिस्टर रहते, लेकिन फिर हो नहीं पाए, पाकिस्तान विजिट बन नहीं पाए।
अरे बाहर प्राइम मिनिस्टर भी अपने व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं पूरी कर पाता कभी कभी।
हाँ, उसको तो माहौल से, वातावरण से, परसेप्शन से और पॉलिसीज के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते।
बहुत फैसिनेटिंग बात है।
दूसरे क्लिंटन,
या ओ क्लिंटन से मिले आप?
मैं नरसिम्हा राव
एक सेकंड, हाँ अब मेरा बात शुरू। हाँ,
मैं नरसिम्हा राव जी के साथ गया हुआ था।
हाँ।
जर्नलिस्ट हुआ अमेरिका के टूर पे, हुआ कि भाई व्हाइट हाउस में मीटिंग थी,
तो आप एयर इंडिया वन में उड़ते थे इन लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ
एयर इंडिया स्पेशल एयरक्राफ्ट में जाते।
अच्छा,
तो मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ बहुत ट्रिप में गया, 30-40 बार कम से कम, है ना। तो वो उन दोनों ले जाते, तब तो बंद हो गया। हाँ, तो ओवल रूम में उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट की, तो सिर्फ वहाँ से हुआ, व्हाइट हाउस ने कहा कि सिर्फ 5 जर्नलिस्ट अलाउ हो सकते हैं, जगह नहीं उसके अंदर।
अच्छा,
क्योंकि डेलीगेशन रहता और ये जर्नलिस्ट पास, तो लॉटरी निकालेगी चिट निकाली, चिट में मेरा नाम निकल आया। तो मैं ओवल रूम में पहली बार गया वहाँ।
आप ओवल ऑफिस गए हो?
हाँ, ओवल ऑफिस।
हाँ।
ओवल रूम जो भी
है,
है ना।
हाँ।
उसमें वो मीटिंग में बैठा, कैसे बातचीत होती, क्या होता।
हाँ।
जब पहली बार देखने को मिला उस उम्र में,
क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, तो क्या ये बेटिंग एप्स, ये जो फैंटेसी लीग ड्रीम 11 टाइप, मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी एक का, इस पे क्या है BCCI का एक पॉइंट ऑफ व्यू?
देखिए, जब तक एज लॉन्ग एज दे आर ट्राइंग टू प्रमोट टैलेंट, लोगों को एक एक्सपर्टीज, तब तक तो ठीक है। कुछ एप्स जो गैम्बलिंग साइड
एक थिन लाइन हो जाती है ना,
तो वो फिर गड़बड़े, तो ये जो तमाम आ गई।
पर आपको लगता है अल्टीमेटली राजीव जी, जैसे इंग्लैंड में तो है कि भाई बेटिंग को लीगलाइज कर सकते हैं, क्या ऐसा फ्यूचर देखते हो आप?
देखिए, हमारा कंसर्न सिर्फ रहता है कि मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए।
हाँ।
बेटिंग तो आप रोक नहीं सकते,
बेटिंग तो हो ही
होगी। में लोग जो है इस बात पे बेटिंग करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी।
क्या बात कर रहे हो, आपड़ में ऐसा?
हाँ, करोड़ों का सट्टा इसी पे लग जाता है, आदमी की फितरत है, महाभारत के जमाने से चल रहा है।
महाभारत में कौन लगा रहा था?
महाभारत में लोग, आपको ये नहीं पता कि महाभारत में जुए से तो झगड़ा
शुरू। अच्छा, वो तो एक अलग बात, मुझे लगा महाभारत में लोग ये लड़ रहे थे कि कौरव जीतेंगे पांडव, इसमें सट्टा लग रहा था मुझे, ये लगा ऑब्वियसली। वो तो आप में कितना घमंड है?
घमंड किस चीज का करें?
पता नहीं, BCCI का वाइस प्रेसिडेंट हो, इंडियन क्रिकेट में कितने सालों से हो, MP हो, इतने बड़े आदमी हो,
उससे क्या फर्क पड़ता है? इन घरों में कितने MP आए चले गए, कोई पूछ रहा है? अमेरिका के 10 राष्ट्रपतियों का आप नाम लगातार मुझे गिना दो, अगर आपको याद हो, कंटिन्यूस
4-6 तो गिना दूंगा, उससे
10 नहीं गिना सकते, जो सबसे पावरफुल होता है वर्ल्ड का। तो बाकी हम लोग क्या है, तो किस चीज का घमंड करें? कौन याद रखने वाला?
आंसर तैयार,
कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे? मशरूफ जवाना मेरे लिए कोई वक्त अपना बर्बाद करेगा?
कभी तो एक ड्रिंक चढ़ गई और बोला कि देख भाई मैं चलाता हूँ इंडियन क्रिकेट,
अभी किसी भी को
कभी नहीं होता ऐसा कि ड्रंक हो गया।
टेम्परेरी सब चीजें, आपको पद आते हैं जाते रहते हैं।
हाँ, सही बात,
फेम भी आती जाती रहती है।
आपका पद कभी जाता नहीं है, आपका पद कहाँ जाता है? आप तो कांस्टेंट हो ना,
कितने आए कितने चले,
पर आप तो इंडियन क्रिकेट के कांस्टेंट हो।
किस चीज का घमंड?
कैसे होता है, कैसे रहता है आदमी इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में इतने साल? मैं नेगेटिवली नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पॉजिटिवली पूछ रहा हूँ, कैसे टैक्टफुली आप रहते
हैं? टैक्टफुली नहीं, जब आप अपना काम करते हैं बिना किसी कन्फ्रंटेशन के करते हैं, और आप ये ध्यान में रखते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है, एसोसिएशन है, BCCI एक गेम है, और फिर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए अगर नहीं लड़ते तो सब आपको पसंद करते हैं और रखते हैं अपने साथ, तो कितनी रिजीम चेंज हुई। जब मैं BCCI में आया था 91 में, तो माधवराव सिंधिया प्रेसिडेंट थे, उसके बाद कितने प्रेसिडेंट आए पिछले 33 साल में,
माधव राव से रॉजर बिनी तक, ये तो क्रेजी है।
सबके साथ काम किया, तो और डालमिया जी, बिंद्रा जी की टीम जो थी, भारतीय क्रिकेट और बीसीसीआई की शक्ल उन्होंने बदली उस समय, जो ये मॉडल लाए ब्रॉडकास्ट राइट्स ने, वरना सब दूरदर्शन को चला जाता था, इसकी कभी अहमियत ही नहीं देखी। जो ब्रॉडकास्ट राइट्स उन्होंने बेचना शुरू, वहाँ से इनकम आनी शुरू की, वहाँ से 83 का वर्ल्ड कप जीता, तो खिलाड़ियों के नाम को पैसे देने के लिए नहीं थे, लता मंगेशकर को शो करना पड़ा था, और उससे जो है जो पैसा इकट्ठा हुआ तो वो खिलाड़ियों को दिया गया था, उसके बदले में बीसीसीआई लता जी को 2 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स हर मैच के देने का उन्होंने प्रावधान किया था बीसीसीआई ने, कि भाई इन्होंने उस समय लता जी नहीं किया, लता जी ने हालांकि लिए कभी नहीं।
अच्छा, हाँ कभी नहीं लिए,
वो तो राज्यसभा में भी थी तो कभी ना एयर टिकट लेती थी ना एमपी लाइट फंड लेती थी, कोई भी फायदे उन्होंने लिए नहीं एमपी का, जो सुविधाएं मिलती थी, जो घर मिलता है उनको टाइप 7 घर का अधिकार था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया कभी हवाई जहाज की टिकटें,
कभी नहीं। उनको क्या जरूरत है, उनको किस चीज की जरूरत है?
नहीं, जरूरत क्या, तमाम लोग जो तमाम उद्योगपति हैं एमपी वो लेते हैं।
है? ये कौन है?
तमाम
फिर भी कौन?
मैं इतनी लिस्ट है, आप निकालो।
जी ठीक है ना,
सबने लिए तो उसके।
आपने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? शाहरुख दोस्त है, कुछ 1-2 रोल?
2-3-4 बार कुछ डायरेक्टर्स ने बोला भाई ये काम हम नहीं करेंगे।
क्यों, वो काम आपको अच्छा नहीं लगता?
नहीं, अच्छे लगने की बात नहीं है, कि वो मतलब उस तरह के रोल होते हैं कि वो उनमें आपको जैसे फिट किया जाता रोल में, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। अभी भी एक कोई बना रहा था फिल्म, उसने कहा कि इसमें पॉलिटिशियन का रोल आपका।
अच्छा,
तो मैं शाहरुख से पूछा, शाहरुख ने कहा राजू जी आपका काम ही नहीं।
सीधा आप भी शाहरुख खान से पूछ रहे हो कि मैं रोल करूँ?
भाई वही सबसे बड़ा स्टार है तो उसी से पूछते
तो हैं। हाँ, सही बात है,
वो तो ऐसी बात है कि वो एमपी बनने के उसको ऑफर आए तो मुझसे पूछेगा कि बनना चाहिए।
अभी तक आप लोगों ने दी नहीं क्या ऑफर अभी तक?
लेकिन ये कि वो पूछेगा ना।
सही बात है, पूछने
जो जिसमें
शेव रोज करते हो?
अब आप नहीं करते तो आपका काम भी मुझे ही करना पड़ता।
ये हुई ना बात। राजीव जी, मेरे को पर्सनालिटी आपसे टिप लेनी है, कैसे करते हैं कि सारे लोग दोस्त हों?
देखो ऐसा
कोई कोई मेरे बारे में बुराई ना बोले।
मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो है शत्रुता कटुता नहीं होती, देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रीमोनी इन पॉलिटिक्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन।
ठीक बात
है ना, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी।
पर कभी तो ऐसा होगा, होता होगा कि आपके अपोजिंग पार्टी ऐसा कुछ कर दे जो आपके जमीर को अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, ऐसी तो भी तो चीजें होती
है, तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं, या कोई अपने आप अगर कोई नाराज है चिड़ा हुआ है तो इसकी समस्या वो जाने, हम क्यों जो है बेवजह उसके लिए स्ट्रेस लें, टेंशन लें। हाँ, लेकिन अगर कोई है तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ एक बार उसको बातचीत करके और ठीक करने की कोशिश करूँ। काशीराम तार छोड़ के हमारे इंटरव्यू उठ के चले गए।
ऐसा क्या पूछ लिया था आपने?
वो मैंने वही बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा था।
हाँ, तो सीधा पूछ लिया था।
हाँ, कि आपने तो उसके बारे में भी बयान दिया था कि यहाँ क्या होना चाहिए, उन शब्दों को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एकदम से तार छोड़ के उठ के चले गए गुस्से में।
तार तोड़ दी?
मतलब वो जो
लेपल तोड़ दिया?
हाँ, लेपल निकाल के उठ के चले गए थे गुस्से में। तो उस चीज़ का मैं बुरा थोड़ा मानूंगा कि मेरे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये उनका अधिकार है कि वो जवाब दें या न दें। वही जब मैंने मायावती जी से पूछा बहुत ये सवाल, बहुत मतलब मुझे लगा कि शायद ये भी वैसे ही करेंगे, और उनसे मैंने सवाल सीधे पूछ दिया मायावती जी से कि आपके काशीराम जी से क्या ताल्लुकात है, क्या रिश्ते हैं?
सीधा यही पूछ दिया,
मैंने क्या रिश्ते हैं आपके काशीराम जी से? तो उन्होंने कोई तार नहीं तोड़ा, कोई नहीं उठी, ना कोई गुस्सा। वो उनका एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। पूरे सवाल को ही डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया।
ये कला कहाँ से आती है राजीव जी?
तो ये कला है वो अनुभव से आती।
आपने इतने इंटरव्यू लिए, आप खुद अब पब्लिक लाइफ में हो, कहाँ से आती है? मतलब क्रिटिसिज्म ले लेना और उसको ऐसे स्क्वायर कट मार के उस पर चौका मार देना।
ये देखो, इसको बोलते हैं ना प्रत्युत्पन्न मति, स्पॉन्टेनियस जो आपका होता है वो अपने माइंड सेट से होता। किसी का माइंडसेट गुस्से वाला होता है, किसी का कूल होता है, किसी टैक्टफुल होता है। हर एक पर्सनालिटी के अलग अलग हुनर होते हैं।
इन इंटरव्यूज के मैं ऐसे आ रहा था कि सोनिया जी ने आप पे भरोसा किया अपने पहले हिंदी इंटरव्यू में। किसने बोला राहुल जी को कि अर्णब को दो फर्स्ट इंटरव्यू? मैं ये जानना चाहता हूँ सच में, मतलब अगर बता सको। सॉरी
नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, तो उन्हीं का फैसला था, मैंने खाली इंटरव्यू देखा हुआ।
आप नहीं थे उस कमेटी में जो मतलब कुछ इनर सर्कल में किया?
नहीं, वो उनके ऑफिस में तय हुआ था और उन्होंने।
पर आपको भी लगा होगा ना कि यार ये गलत?
मेरा अपना अंदाजा है कि व्यूअरशिप देख के उन्होंने दिया होगा। उस समय टाइम्स नाउ की व्यूअरशिप,
उस वक्त तो अर्णब एकदम हार्ड।
हाँ, टाइम्स नाउ की व्यूअरशिप अच्छी थी, उस लिहाज से उन्होंने दिया होगा।
पर गलत डिसीजन था ना कि नहीं था?
देखिए ये अलग चीज है, ये लोगों का एक परसेप्शन
रेट्रोस्पेक्ट।
लेकिन राहुल जी को जो बात कहनी थी, जिस चीज पे एम्फेसिस देनी थी, उन्होंने कही।
आप मेरा उमर अब्दुल्ला वाला इंटरव्यू देखना,
दो ही कल देखा।
मैंने राहुल जी के साथ भी किया, भारत जोड़ो वाला भी किया था।
पता है,
पार्टी थोड़ी नाराज थी उससे, पर चलो पार्टियां तो नाराज होती, क्योंकि मैंने भारत जोड़ो को थोड़ा, मुझे लग रहा है, मेरे को भी याद नहीं अब वीडियो, अब आपको भी पता है कि वीडियो आप बनाते रहते हो तो हर चीज़ थोड़ी याद रखते हो, लेकिन कुछ मैंने हो सकता है यात्रा को क्रिटिसाइज़ कर दिया है, तो उसके लिए वो थोड़े खफा थे राहुल जी की टीम भी।
राहुल जी खफा नहीं होंगे,
राहुल जी की टीम।
हाँ, राहुल जी ऐसे नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो तो आलोचना भी सुनते हैं अपनी। हाँ। है ना, तारीफ कम ही सुनते हैं।
सोनिया गांधी जी का इंटरव्यू करवा दो प्लीज,
हमने उनका सबसे पहला हिंदी इंटरव्यू।
वही तो, इसीलिए तो।
आपने राजीव जी को पॉलिटिक्स में आने का विरोध क्यों किया था? क्यों नहीं चाहती थी कि राजीव जी पॉलिटिक्स में? राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो सुना आपने मना किया था, आप नहीं चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बने, आपने बड़ी कोशिश की उनको रोकने की।
जी हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन राजीव जी ने मुझको समझाया था कि उनका फर्ज था, उनका कोई चॉइस नहीं था।
एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अभी अभी
मोदी जी का भी इंटरव्यू किया मैंने, तब जब एमएलए भी नहीं थे।
हाँ, तब आपने क्यों किया उनका इंटरव्यू, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या उनका ऐसा ओहदा हो गया था संघ के अंदर या फिर
पार्टी में थे, संगठन में वो।
हाँ।
और जेटली, अरुण जेटली जी से हमारी दोस्ती थी।
अच्छा।
उनके हम जाते रहते थे तो मुलाकात होती थी उनसे।
अच्छा, जेटली जी और मोदी जी।
हाँ, जेटली जी मोदी जी का बहुत अच्छा था।
अच्छा।
और तब वो फिरोजशाह रोड में रहते थे।
हाँ।
एक एमपी के घर में।
अच्छा, एक एमपी के घर के जो पीछे जो जगह होती है,
रूम होता है,
समझ गया।
अच्छा। इंटरव्यू हमारे ऑफिस में वहाँ मालवीय नगर में।
हाँ।
बेसमेंट में स्टूडियो था उसमें।
ठीक है।
तब भी लेकिन वो कपड़े बहुत अच्छे।
कहते जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं?
सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए।
पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है?
मैं,
क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है।
मैं, मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मैं, मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है, लेकिन मैं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है।
मैं कह रहा हूँ अगर आप एनालाइज करके समझो, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को उठते हुए देखा है।
देखो, मुझे लगता है कि उनका जो,
या सिर्फ लक और
नहीं, नहीं, एकाकीपन रहा, जो घर छोड़ के वो अकेले सब रहे और सारा उन्होंने देखा, तो उन्हें दुनिया समझ में आ गई कि देश, दुनिया, समाज ये है क्या, लोग कैसे हैं,
कलेक्टिव साइकोलॉजी समझे वो।
हाँ, भटकना बहुत पड़ा उन्हें, तो उसमें वो अध्यात्म में, धर्म में, राजनीति में, सब में अपना
हाथ मार गया है।
उन्होंने एक अनुभव बटोरा।
जी जी जी। किसी ने कभी बोला होगी एडिट में यार ये हटा देना?
SB चौहान साहब।
हाँ। ये कौन हुए, सॉरी?
जो होम मिनिस्टर थे।
अच्छा।
उनसे इंटरव्यू किया था तो मैंने कभी डिमोलिश हुआ ये सब, तो उसमें तो उसमें उन्होंने कुछ बोला था। हाँ। तो वो फिर उन्होंने कहा कि इसको हटा दो। ये इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर थे।
जी, जी,
तो उन्होंने कुछ, उन्होंने बोल दिया था कि फला को जूते मारने चाहिए, इंद्रजीत गुप्ता ने।
अच्छा।
हाँ, फिर जनता जूते मारेगी अगर ऐसे करे। फिर उन्होंने उसको रात में कहा कि इसको हटा दो, इसका गलत रिएक्शन जाएगा।
फोन आया फिर?
हाँ, फोन आया।
तो मतलब इंटरव्यू देने के बाद नेता सोचता होगा कि यार मैंने क्या। हाँ। क्या बोल दिया। अच्छा। ठीक है।
नेता विश्वास में जर्नलिस्ट को बुला बुला के सलाह लेते थे कि भाई ये इशू है, इस पर हमें क्या करना चाहिए।
अच्छा।
ये सब मुद्दा में सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बात कभी बाहर नहीं जाती थी। 250 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, नेता बोल देता था, पॉलिटिशियन या मिनिस्टर जो भी है, कि सभी ऑफ द रिकॉर्ड। तो ऑफ द रिकॉर्ड होता तो छपता नहीं था। सेंट्रल हॉल में भी
250 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता ने बोल दिया ऑफ द रिकॉर्ड,
प्रिंट मीडिया से होता।
हाँ हाँ, समझ गया।
तो ये नहीं, तो ये तो कभी दौर था ही नहीं कि स्टिंग ऑपरेशन हो जाए या रिकॉर्ड चुपचाप कर लिया और ये कर दिया।
सेंट्रल हॉल का कोई एक बढ़िया किस्सा सुनाओ जहाँ आप सबसे पहले, जब आप किसी ऐसे नेता से मिले होंगे, वैसे आप तो जर्नलिस्ट होके मिल ही लिए थे सब लोगों से।
नहीं, मैंने MP बनना इसलिए तय किया।
क्यों?
कि सेंट्रल हॉल में नहीं घुस पाते थे। सेंट्रल हॉल का सुनते बहुत बड़ा केस था, क्योंकि
आप कभी जर्नलिस्ट बन के अंदर नहीं जा पा सकते।
असल क्या है ना कि ये होता था कि सीनियरिटी पे।
अच्छा।
कि आपने 25 सेशन अटेंड किया हूं, कवर किया हूं।
अच्छा, एक क्राइटेरिया होता था।
क्राइटेरिया होता था, एक तो डेली न्यूज़पेपर को मिलता था, मैगजीन को मिलता नहीं था, मैगजीन में थे, वीकली पास बनता था। दूसरा ये कि वो मैगजीन में भी था कि एडिटर के लिए सिर्फ है।
हाँ।
और जर्नलिस्ट के लिए 25 सेशन रिपोर्टर ने कवर किया तभी उसको सेंट्रल हॉल मिलेगा।
अच्छा।
सीनियरिटी तो आप उम्र तो बढ़ा नहीं सकते हो आप। तो दूसरा क्या तरीका है? तो दूसरा तरीका है कि आप MP बन जाओ। हाँ? तो मैं पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ गया
सेंट्रल हॉल के लिए। अब
नहीं मतलब
नहीं ऑब्वियसली
खाली सेंट्रल के लिए मैं
कोई नहीं ऐसे ही। अंगूठी का बताओ, अंगूठी कहाँ शादी में मिली थी?
अनुराधा जी ने, अनुराधा जी मेरे हिसाब से पहनाती रहती किसी।
अच्छा अच्छा, अनुराधा जी ने दी
स्टोन जो बोलते हैं।
कोई मीनिंग भी होगा इसका कि ये इससे
किस समय क्या असर रहता है?
अच्छा, इसका क्या असर है
अभी नहीं पता मुझे।
अच्छा, लेकिन पहन
ग्रह का क्या? हाँ
अच्छा अच्छा, पति धर्म में पहनी जा रही
है। हाँ तुम बताया तो
वंडरफुल
लोग पहनते।
नहीं नहीं, तो उसमें क्या है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर आपको अब ये लगता है राजीव जी कि अब के नेता ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी आइडियोलॉजी को ही प्रोपेगेट करो, हमसे इतने सवाल मत पूछो, और मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा हूँ।
मुझे लगता है जो सोशल मीडिया का दौर आया उसमें छोटी छोटी बातों में इंटरप्रिटेशन होके बहुत तमाशा बन जाता है।
पर जैसे आप भी बताते हो ना कि ऐसे नेता भी पसंद करते थे कि यार आप उनके अगेंस्ट भी लिख दो।
हाँ,
जैसे राजीव गांधी का भी आपके साथ है ना, आपने भी एक इंटरव्यू में बोला है कि
नहीं, मेरी कवर स्टोरी उनके खिलाफ की थी, लोगों ने उनको जाकर शिकायत की, उन्होंने उन लोगों को डांट दिया और मुझसे कहा कि तुम लिखते तो तुम लिखो हमारे खिलाफ।
हाँ।
उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी रहेगी तो तुम मुझे 10 लाइन मेरे सपोर्ट में लिखोगे तो लोग यकीन करेंगे। अगर तुमने क्रेडिबिलिटी अपनी खत्म कर ली
तो फिर कौन यकीन करेगा?
कोई नहीं यकीन करेगा, सब मानेंगे कि तुम मेरे दोस्त मतलब मेरे साथ मेरे करीबी हो तो तुम इसलिए ये सब बातें लिख रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तू तो कहते थे हमारे खिलाफ लिखो,
वो खुद ओपनली कहते थे।
ओपनली कहते थे।
तो ये कब आपने खत्म होते हुए देखा? क्योंकि क्योंकि अटल जी तक तो था, मतलब क्या सोशल मीडिया के एडवेंट से ये खत्म हुआ है?
सोशल मीडिया का भी असर रहा, फिर टेलीविजन का बहुत असर रहा, टीआरपी के चक्कर में न्यूज चैनल्स ने जो शुरू किया हर बात, हर चीज ब्रेकिंग है, जैसे इस देश में कुछ बचे नहीं जिसको तोड़ा ना जा सके, हर चीज ब्रेकिंग।
ये अच्छा बोला,
छोटे छोटे बयान जो है वो ब्रेकिंग न्यूज।
सही बात है, ये आपकी आदत है कुछ लिखते रहने की?
आपकी दुनिया करने की आदत है।
ये हुई ना बात, अब आया ना मूड में। हाँ आयो, MP बनकर सबसे ज्यादा एक फील क्या आती है, सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या है इस लाइफ की?
नहीं, MP बनके जो है एक तो ये है कि आपकी एक्सेस सब तरफ हो जाती है, है ना, किसी से भी आप मिल सकते हो। एक आपके पास एक ऐसा डेजिग्नेशन रहता है जो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे मिनिस्टर्स के साथ हो, चाहे दूसरी सब जगह हो, और उसमें आपको चाहे इंटरनेशनल गैदरिंग हो, सब जगह एक आपको वो रहता है कि इन्वाइट किया जाता है और आप जाके वहाँ बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पार्लियामेंट में भी सब किसी किस्म के इश्यूज आप उठा सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी होती
है। बिल्कुल,
यू कैन स्पीक इवन अगेंस्ट जुडिशरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस,
दैट इम्यूनिटी यू गेट बिकॉज यू आर अ MP।
हाँ, तो सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप उसको समझते हो और करते हो, जैसे बिल्स बनते हैं
जी,
तो तमाम सांसद ऐसे हैं कि जो उसमें रुचि लेते हैं, जो समझते हैं, समझने की कोशिश करते हो, तमाम ऐसे हैं कि जिनको उसको ना पढ़ते ना देखते हैं, तो उसकी वजह से बिल पास हो जाते हैं, सरकार ने जो बिल बनाए वो पास हो जाते हैं, जो जो स्क्रूटनी होनी चाहिए बिल्स की या जो स्पीचेज होनी चाहिए उन पर, लेकिन उस स्पीचेज का हालांकि कोई अर्थ नहीं होता, जो बिल जैसा होता है वैसे ही पास करना पड़ता है अगर मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की, लेकिन ये कि आप उनमें अपना एक दखल जब स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं तो आप दे सकते हैं।
कभी किसी सेलिब्रिटी से मिलके आपको ऐसा हुआ कि हाँ यार आज मैं फेमस व्यक्ति से मिला, या आपके लिए तो सब नॉर्मल है? कभी किसी से
देखिए, हम जिस चीज में हैं, मीडिया हो
जी,
पॉलिटिक्स है, क्रिकेट है, इसमें कहना है कि आप उसी दिन आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, उसी दिन एक घर में लौट के आते हैं तो किसी चपरासी के भी काम की बात करनी पड़ती है, उसके साथ भी बात करनी पड़ती है, ड्राइवर से भी बात करनी पड़ती है, हम लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किससे आप, वहाँ दूसरे माइंडसेट से बात करते हैं, नीचे आगे, यही मेरे ख्याल से व्यक्ति के अंदर खूबी होनी चाहिए, उसको जो है
बहुत सही बात,
सबके साथ बात करें समान भाव से, समभाव से।
क्या बात बोली आपने, क्या है ये अलायंस का लोगो, सीट शेयरिंग कुछ अनाउंस नहीं हो पा रहा? मैं एज ए जेन्युइन कंसर्न्ड वोटर बोल रहा हूँ।
अब आपने देखा होगा इसका असर कि इंडिया नाम से ही लोग घबरा गए,
घबरा गए,
इंडिया इंडिया सबको पता तो चल गया,
बिल्कुल चल गया।
सबसे बड़ी चीज होती है अलायंस की आइडेंटिटी नीचे तक जनता तक जाए कि भाई कोई अपोज,
ये हो गया, ये टिक है,
हो गया
इस पर तो टिक है।
अब ये कि सीट शेयरिंग तभी होता है जब नजदीक आ जाते हैं लोकसभा चुनाव।
बंगाल में क्या होगा?
बंगाल में भी तृणमूल और वो तो गठबंधन में है ना,
देखते क्या होगा। नहीं, तृणमूल और लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ थोड़ी आ पाएंगे।
नहीं, आप उस समय का सिनेरियो देखो, 77 में क्या हुआ था, 77 में
सब साथ आ गए थे
इंदिरा जी के खिलाफ, जनसंघ और कम्युनिस्ट एक साथ, आइडियोलॉजी बिल्कुल यूं,
ठीक बात है।
और फिर VP सिंह ने जब यूनाइट किया था, जनता दल बनाया था, तो उनकी सरकार किसने सपोर्ट किया था? VP सिंह के तो सब कितनी सीटें, 140 जनता दल के आई थी, बीजेपी और CPM लेफ्ट फ्रंट इनके सपोर्ट से बनी थी।
हाँ ऐसा तो हुआ ही है भारतीय राजनीति में, कुछ अनप्रेसिडेंटेड नहीं हो जाएगा,
जबकि आइडियोलॉजी के लिहाज से एकदम उल्टे हैं।
गाजर का हलवा या सूजी का हलवा? हलवा गाजर का।
अभी आप कह रहे थे फिट हो, फिट हो, आप हलवा बता रहे हो, तो तुम्हें खाना चाहिए।
अरे मैं, मेरे को तो बड़े सेलिब्रिटी बोलते हैं तुम फिट नहीं हो तो और फिट हो जाओ। मैं मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू कर रहा था एक दो महीने पहले, उस आदमी ने मेरे को जो कॉम्प्लेक्स दिया ना, अब मैं खाना ही नहीं खाता, भागता ही रहता हूँ, थोड़ा कम तो हुआ शायद।
नहीं नहीं आप ज्यादा ही कहाँ है जो कम होगा,
नहीं वो तो शर्ट लूज है ना, अभी अभी खरीद के लाया हूँ आपके लिए। बीजेपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से कुछ आपको बहुत ज्यादा अंतर दिखता है?
कांग्रेस पूरे देश की राजनीति करती है, हम ना क्षेत्रवाद करते हैं कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे या उस नाम पे है ना, किसी के साथ भी भेदभाव करने, सबकी कोई राजनीति कांग्रेस नहीं करती।
क्या बीजेपी कभी ऐसा काम करती है जो आपके जमीर को नहीं भाता है? आपको लगता है यार ये कई बार हो गई लाइन?
कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी से जुड़े लोग कई ऐसी चीजें करते हैं, कई ऐसे बयान देते हैं, कई ऐसे कृत्य करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती।
जैसे कि क्या?
बहुत कितनी घटनाएं हैं आप देख लीजिए।
तो तब आप कैसे, मतलब मैं सीखना चाह रहा हूं, तब आप कैसे बीजेपी वालों के साथ फिर भी कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ पाते हो?
काम तो आपको करनी पड़ता है ना राजनीति में।
क्या कभी ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है जो आपको पता है कि यार ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसका जमीर सही नहीं है?
काम करना पड़ता है,
पड़ता है
ऐसे अगर वो पद पे है और किसी डिसीजन मेकिंग रोल में है तो आपको करना पड़ेगा
और काम निकलवाना भी है उनसे।
हाँ
क्या एक चीज राजीव जी इंडियन क्रिकेट को चलाने के बारे में जो हम एज ऑडियंस को समझ नहीं आता है?
अगर हम जीत गए तो जी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्लेयर खेले, अगर हम हार गए तो BCCI बहुत गड़बड़ कर रही है और लोगों को गलत में BCCI के बारे में कि बड़े पैसे कमा रहे हैं। कोई पैसे नहीं, क्रिकेट पे इतना खर्च हो रहा है, कितने स्टेडियम हमारे यहाँ हो गए,
हजारों करोड़ की कमाई भी तो हो रही है,
हजारों करोड़ हम टैक्स में दे रहे हैं, ये लोग नहीं जानते। अकेला खेल संगठन है, स्पोर्ट्स बॉडी है जो भारत सरकार को हजारों करोड़ टैक्स देती है, कोई एग्जम्पशन नहीं है BCCI को, और ना एक रुपए हम ग्रांट लेते हैं सरकार से, तो ना तो हम भारत सरकार से कोई ग्रांट ली पहले ना अभी तक ले रहे हैं, और उल्टे हम टैक्स दे रहे हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज देती, ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे कोई गवर्नमेंट बॉडी हो। एक ऐसा गुलदस्ता था BCCI में जिसमें सब किस्म के लोग थे, जिसमें जो है बिजनेसमैन डालमिया जैसे था, जिसमें ब्यूरोक्रेट बिंद्रा जैसे थे, जिसमें पवार साहब जैसे पॉलिटिशियन थे, माधवराव सिंधिया जैसे पॉलिटिशियन थे, NKP सालवे थे, हाँ इन लोगों ने इस चीज को बढ़ाया और बढ़ा के आज क्रिकेट अपने पैरों पे खड़ा होके, अभी आप देखो लाख लोग क्रिटिसाइज कर लें, खड़े हो जाते हैं जैसा है को, लेकिन जैसा है 39% जो है ICC में लड़के लाए ना BCCI का शेयर, पहले तो 16% शेयर भी ICC मिलने को तैयार नहीं था। वो शेयर जो आता है अरबों डॉलर वो कहाँ लगेगा? जगह जगह स्टेडियम बनाने पे, खिलाड़ियों पे, खेल स्ट्रक्चर बनाने पे, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कुछ थोड़ा मिलता है, हम तो मीटिंग में जाते हैं है? तो हवाई जहाज का टिकट मिल जाता है, होटल मिल जाता है और चाय बिस्कुट मिल जाते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता।
सैलरी?
सैलरी कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की कोई सैलरी, गलत बहुत लोगों को लगता है कि हजारों करोड़ BCCI में आ गए तो आप लोगों के पास भी हजारों करोड़ हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ऑफिस बेरर BCCI के, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनकी कोई सैलरी नहीं होती है, TA DA टाइप्स यही सब बतौर से जो पैसा है प्लेयर्स को दिया जाता है, स्टेट इंस्टेंस में जाता है जहाँ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिकेट चल, डोमेस्टिक हमारे यहाँ 55,000 से ज्यादा मैचेस पूरे कंट्री में हर साल होते हैं जो स्टेट एसोसिएशंस कराती हैं, वहाँ से कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, U14, U16, U19, U23 और फिर रणजी, फिर महिलाओं के भी शुरू हो गए, महिला क्रिकेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, महिला क्रिकेट भी बढ़ रही है।
आप क्लोजली काम करते हो, आपको व्यक्ति एफिशिएंट मालूम देते हैं जय शाह? पर्सन ऐसे ही पूछना, जनरली पूछना, जनरली
मेहनत तो भयानक करना है, रात दिन इसी काम में जुटे हुए, मतलब वो क्रिकेट के काम में रात दिन लगे रहते हैं,
ठीक है,
तो उसकी वजह से जो ये सब हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा, इसके अलावा हम ICC का सबसे बड़ा जो शेयर लाए तो सबसे बड़ी लड़ाई थी,
ये तो बहुत बढ़िया बात है, लाने चाहिए,
तो उसका वुमेन क्रिकेट शुरू हुआ, WPL शुरू हुआ, वुमेन को बराबर का पैसा मिलने लगा क्रिकेटर्स को, तो ये सब डिसीजन तो हाल में BCCI ने लिए,
बहुत अच्छी बात है, जो रणजी ट्रॉफी की भी जो सैलरीज बढ़ी हैं वो भी बहुत अच्छी बात है,
डोमेस्टिक प्लेयर्स,
क्योंकि इंटरनेशनल और ये सब तो ठीक है, उनको तो अच्छा पैसा मिल रहा है,
जूनियर ने सबका बढ़ा,
वो तो बढ़ते ही रहना चाहिए। जैसे आपने जय की बात की, जय शाह जी की, अच्छी बात है आप बता रहे हो वो इतना कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, पर आप ही के पार्टी के लोग और ऑपोजिशन के लोग उनका ही, मतलब जैसे जब BJP वंशवाद वाली बात करती है तो आपकी पार्टी के भी बहुत फायर ब्रांड लीडर्स टाइप हैं जो बोलते हैं भाई जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी तो अपने पिता के होने की वजह से ही वहाँ पे है।
जय शाह पॉलिटिक्स में तो है नहीं, अगर वो पॉलिटिक्स में आए और अमित शाह जी के गृहमंत्री रहते हो वो एमपी मिनिस्टर या कुछ बने एमएलए बने तो फिर वो वंशवाद का आरोप आएगा। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट कर दिया
जी, जी, जी।
वो तो पूरा इलेक्शन होते यूनानिमसली इलेक्शन होता है उसमें आदमी अपॉइंट होता है। सौरव गांगुली भी हुए थे, रोजर बिन्नी भी हुए, हम भी हुए, जय साहब भी हुए और लोग भी जो होते चले आए हैं तो उस ढंग से होता। तो इसमें तो एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के आधार पर वो इसमें आए हैं। हाँ अगर वो पॉलिटिक्स में आकर उनको गुजरात सरकार में मंत्री बना देते हैं एमपी बनाए तो ये बात हो सकती
है। पर वो भी तो इलेक्शन
जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं वो उनमें 10 दूसरे नाम लेते हैं। जैसे इनके तमाम नेता ऐसे हैं जो इसमें जो मौजूदा भाजपा के नेता या पहले रहे हैं उनके बेटे हैं तो वंशवाद तो हर पार्टी में वो भाजपा में
तो समाज में हमारे
तो भाजपा में तो भाजपा को वो कहते हैं जो बाकी लोग कहते हैं कि भाई आपको परिवारवाद पे बोलने कोई अधिकार नहीं क्योंकि आप क्या भी परिवारवाद है। लेकिन उसमें जयसाय वाला उदाहरण नहीं जचता
क्योंकि
जमता नहीं क्योंकि जयसाय पॉलिटिक्स में नहीं है।
अमित शाह भी तो
बाकी जो उदाहरण है उसमें
आप तो गुस्सा ही हो गए।
बाकी जो उदाहरण है वो सही है। बाकी
मैं तो कह रहा हूँ हर पार्टी में लेकिन अमित शाह जी भी तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में रहे हैं।
हाँ तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई परिवारवाद की ऐसी वो ये नहीं है। वैसे माधवराव जी प्रेसिडेंट है, ज्योतिराज सिंधिया जी भी रहे, वो तो जो मेंबर होता है हिसाब से उसको लोग बनाते हैं। तमाम दूसरी जगह भी एसोसिएशन है चाहे वो दूसरे विदर्भ हो या और हो या बंगाल हो, बंगाल में डालिमिया जी का बेटा है ना तो वो या चंडी गांगुली थे उनके बेटे सौरभ।
मतलब ये है ही ट्रेंड
ये वो ये उसमें है तो उसमें कोई क्योंकि इसमें इलेक्शन उस तरह से होता है कोई परिवारवाद की बात नहीं, सबको वही 30-35 मेंबर्स को चुनना होता
है। यार ये स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रख देने तो थोड़ा गलत नहीं है
भाई? आपको लग रहा होगा आपके गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में हो गया तो फिर उन लोगों
ने नहीं, पर आपका भी तो कोई ओपिनियन होगा ना क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर्स का भी तो एक ओपिनियन है उस चीज पे।
नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे,
लेकिन एक जीवित आदमी के नाम
गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे वो
रहे हैं
और बीसीसीआई में भी आते थे।
आपको कोई सैद्धांतिक दिक्कत नहीं है इस बात से कि एक जीवित आदमी पे ही एक जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर उसके नाम पे ही एक स्टेडियम रख दिया?
इसको कोई रोक तो है नहीं कहीं संविधान में?
नहीं सैद्धांतिक रूप से मैं राजीव शुक्ला से बात कर रहा हूँ।
हाँ नहीं सैद्धांतिक रूप से इस चीज में मुझे नहीं रहता कि
नहीं
कोई ऐसी रोक होनी चाहिए।
लेकिन थोड़ा फनी नहीं है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अंबानी एंड अडानी एंड ऐसा थोड़ा फनी?
हाँ तो अंबानी अडानी स्टेडियम जो बन रहा था
हाँ।
तो दोनों एंड जो है वो उनको प्राइवेट कंपनी जो पैसा उनको
उनको बेचे ठीक है
तो उनसे जो पैसा आता उससे स्टेडियम बनता है।
ठीक बात है पर आयरोनिक है थोड़ा जी। मतलब राहुल जी भी तो ये पॉइंट बहुत बार उठाते हैं, मैं कोई नया पॉइंट थोड़ी उठा रहा हूँ।
अडानी अंबानी का है जो अडानी का उठाते हैं वो दूसरा पॉइंट राहुल जी उठाते हैं। वो तो जो फाइनेंशियल और इस तरह के जो आरोप हैं वो हिंडनबर्ग और रिपोर्ट उन सब चीजों पर राहुल जी ने पूरा उठाया
जी, जी,
वो कोई वहां पे गुजरात के क्रिकेट स्टेडियम में कोई इनक्लोजर अडानी का ये बात कभी राहुल जी ने नहीं उठाई।
आपने तो इस बात को जो ट्रिविलाइज किया ना कि छोटी सी बात है,
नहीं इनक्लोजर अगर उन्होंने लिया तो उसकी चीज को उन्होंने कभी नहीं उठाया। उसमें क्या है
मैं बस कहूंगा बस थोड़ा फनी है, बहुत ही हास्यास्पद बात हो जाती है सुनने में लगती है। छोले भटूरे
जितना नीर हाँ छोले भटूरे भी अच्छे लगते हैं। अब वो है कि भटूरे तो नहीं खाते, छोले अच्छे लगते।
भटूरे तो नहीं खाते,
स्वाद तो छोले में होता है भटूरे और उसमें तो
अरे भटूरे में कैसी बातें कर दी हिकलाई।
फिर उसमें कह रहे कि भटूरा ही होने का डर रहता है।
मैंने ना कल इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछा कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ क्या पूछूं, तो एक सवाल बहुत सारे आए वैसे तो, पर एक आया कि यार कानपुर में इतना कम मैचेस क्यों होते हैं?
अब ये जो लखनऊ का स्टेडियम बना है तो इसकी कैपेसिटी 50,000 से ऊपर है, तो बीसीसीआई का प्रेफरेंस आईसीसी का प्रेफरेंस रहता है लखनऊ का स्टेडियम को किसकी कैपेसिटी नया स्टेडियम
ठीक है नेचुरल बात है ऑब्वियस
आधुनिक सुविधाएं हैं। दूसरे होटल्स लखनऊ में बहुत से होटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेसिक कंडीशन होती है। हमारा बहुत मन होता है, मैं तो कानपुर का खुद हूँ पला बड़ा हुई हूँ तो मैं तो खुद कानपुर चाहता हूँ। तो समस्या वहाँ एक तो फाइव स्टार होटल के कम से कम 300 से 500 रूम चाहिए, वो नहीं है वहाँ। और दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, 4 बजे के बाद बंद।
हाँ वो तो छोटा सा एयरपोर्ट है कानपुर का, तो एयरफोर्स
बड़ा एयरफोर्स का है। तो इस सबसे बड़ी तो लोगों को लखनऊ जाना पड़ता। फिर कानपुर और लखनऊ को अलग अलग राज्यों में थोड़ा एक ही राज्य में
बगल में भी है।
हाँ 50 मील की भी दूरी नहीं।
चलो दूसरी जगह चलते हैं ना, थोड़ा अपना घर दिखाओ और क्या।
तब तक लगाओ 10 मिनट का ब्रेक है ना?
ठीक है ठीक 10 मिनट ले लो आप। यार शर्ट तो अच्छी लग रही है नहीं? हेलो सर कैसे हैं सर, लॉन्ग टाइम नो सी।
हाँ
जी जी बहुत दिन हो गए। सबसे अजीबो गरीब अफवाह क्या सुनी है आपने इंडियन टीम या इंडियन क्रिकेट के बारे में? अफवाह हो जो एकदम आप लोग ये क्या बात हो रही है, लेकिन सबसे अजीबो गरीब
लोग कहते हैं तमाम वर्ल्ड कप फिक्स होते हैं, आईपीएल फिक्स होते हैं, पहले से तय था, कि बेवजह की अफवाहें उड़ती रहती हैं।
ये बात आप तक भी पहुंचती है?
हाँ, लोग बोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही गलत होता है। जब लास्ट बॉल पे मैच डिसाइड हो रहा, कौन फिक्स कर सकता?
ये बात भी ठीक है। और अगर नहीं भी हो रहा हो, इतना बड़ा इवेंट फिक्स करना, तो कुछ
ये सब बकवास की बातें होती हैं, लोग बाद में करते रहते हैं।
ये जो 2019 में हुआ ये फाइनल, ये बाउंड्री पे दे दिया उनको रूल, आपको लगा ये सही रूल था?
नहीं, मेरे हिसाब से मैं तो उस रूल से सहमत नहीं था। मैं उस दिन भी ट्वीट किया था कि न्यूजीलैंड टीम को बधाई दी थी कि बहुत अच्छा खेले। मेरे हिसाब से अब तो रूल चेंज हो गया।
हाँ, अब तो चेंज हो गया,
लेकिन तब का रूल था। उस रूल का एडवांटेज मिला इंग्लैंड को।
सोच रहा हूँ,
सीरियस तो तुम हो गए, सवाल खत्म हो गए।
सवाल तो मेरे शुरू में खत्म हो गए थे। सवाल तो मैं सोच के आता ही नहीं। अभी भी क्या लोग अंडर एज रिपोर्ट करते हैं अपने आप को?
हाँ, ये बड़ी समस्या है,
है ना?
इसी वजह से बहुत चीज़ें लगेंगी, जिसमें जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी किया गया। बीसीए ने रूल बहुत सख्त बनाए, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट, ये सारे रूल बनाए। लेकिन उसमें एक समस्या ये आ रही, कई बार क्या होता है कि शादी बाद में हुई और लड़के को उम्र ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो क्या होता है कि लोग आजकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं बच्चे।
हाँ।
है ना, वेट्स करते हैं, तो उससे वो क्या बोन टेस्ट होता है।
अच्छा।
है ना, तो बोन वो ब्रॉड आती है तो उससे उम्र ज्यादा आ जाती है।
अच्छा।
जबकि होती नहीं एक्चुअली, तो ऐसी भी कुछ केसेस हैं।
इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी भी हो ही रहा होगा मुझे
ये एक समस्या। ये तो मेडिकल,
पहले तो बहुत होता था।
हाँ, मेडिकल जो है डॉक्टर्स वही समस्या का निदान निकाल सकते, एक्यूरेट आए।
एक गाना गा दो।
एक गाने,
मैं समझ गया, ये लोकेशन ही थोड़ी ऐसी है ना, गर्मी भी लग रही है, थोड़े डिस्टेंस भी बैठे हैं हम, तो एक गाना गा दो फिर एंड करते हैं। जितने मजे आने थे अंदर आ गए, उसमें क्या। वॉशिंग मशीन चलाई है कभी?
नहीं, वॉशिंग मशीन तो चलाई नहीं मैं।
कभी नहीं चलाई ना?
हाँ, क्यों वॉशिंग मशीन क्यों बोला आप?
ऐसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको वॉशिंग मशीन चलानी आती कि नहीं।
उसमें कौन सी बड़ी रॉकेट टेक्नोलॉजी है?
मुझे
उसमें लिखा होता है दबाते जाओ और उपाय कर।
मतलब डोमेस्टिक काम कितना आपने किया है लाइफ में, बस ये जानना चाह रहा था। केबीसी में अमिताभ बच्चन जी या शाहरुख खान?
अमिताभ जी हैं। किसी जमाने में हमारे बड़ा अच्छा उनसे रिश्ता था, मित्रता थी। जया जी से तो आज भी पार्लियामेंट में है,
चाय पीते हैं इस कैमरा में देख के। राजीव जी, बता दीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
झूठे।
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं तो यही कहूँगा, बशीर बद्र का शेर है
जी 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 जी,
कि चरागों को आँखों में महफूज रखना
जी,
बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
अरे सर, थैंक यू सो मच, क्या प्यारा बोला आपने। एक बार सबको बोल दो कि सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अनफिल्टर्ड बाय संदीश
भाई। अच्छा करते हैं, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को, देखना चाहिए। बड़ा सहज इंटरव्यू करते हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू नहीं होता, बातचीत होती है।
करेक्ट,
है ना,
पर्सनैलिटी से रूबरू होते हैं।
हाँ, और वो बातचीत जो है वो बिल्कुल अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल होती है, ये सबसे अच्छी खासियत।
कभी कभी बिना बताए शुरू भी हो जाती है।
हाँ, तो किसी को अगर जो है एक अल्हड़पन से किए गए इंटरव्यू को देखना है,
अल्हड़पन
तो
अल्हड़पन क्या होता है?
अलर्टपन मतलब बिल्कुल इनफॉर्मल,
कैजुअल,
मस्ती का।
हाँ,
कैजुअल इंटरव्यू।
ठीक बात, तो सब्सक्राइब करो अनफिल्टर्ड बाय संदीश को।
बोले ना,
बोल दिया। और बोल दो ना एक बार प्लीज।
मैं तो हमने कहा कि लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए।
जी जी जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
लो चाय पियो
जी, आप भी पीजिए।
हाँ, दो इसलिए दो मंगाइए
लीजिए। चीनी लेते हो आप?
चीनी ले लेते हैं। नहीं नहीं, छोटी टावल लिया मांग के। सच में गर्मी है,
बहुत पसीने आ गए।
सोचो तुम 4 बजे बिठा रहे थे।
हाँ, वो तो बहुत ही अजीब हो जाता है।